नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 6 मार्च 2020 के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, मौजूदा दौर का एक बड़ा अन्याय है लैंगिक असमानता, पुरुषों और महिलाओं के बीच बराबरी और न्याय सुनिश्चित करने का आह्वान। कोरोना वायरस से निपटने के लिए जरूरी गंभीरता नहीं दिखा रहे कुछ देश, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताई। अफगानिस्तान में कथित युद्धापराधों और मानवता के विरुद्ध कथित अपराधों के मामलों की जांच को मिली हरी झंडी। मानवता के लिए जरूरी है वन्य जीव व प्रकृति का संरक्षण, सुनिएगा एक खास बातचीत। और 1980 के दशक के कठिन दौर में संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले पूर्व महासचिव हावियर पेरेस डी क्वेयर का निधन। आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस साल विश्व में महिलाओं की स्थिति व अधिकारों के बारे में 1995 में हुए बीजिंग सम्मेलन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें समझने का प्रयास किया गया है कि लिंग समानता को प्रोत्साहित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को विभिन्न देशों में किस तरह लागू किया जा रहा है। महिलाओं की स्थिति पर एक अन्य रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में पहले की तुलना में मौजूदा समय में लड़कियां कहीं ज्यादा संख्या में और ज्यादा अवधि के लिए स्कूलों में शिक्षा हासिल कर रही हैं, लेकिन इस क्षेत्र में अच्छी प्रगति के बावजूद उनके लिए समानता और हिंसा रहित माहौल सुनिश्चित करने की मंजिल अब भी दूर है। इन रिपोर्टों के सार पर आधारित एक रिपोर्ट के साथ यूएन हिंदी न्यूज के प्रमुख महबूब खान।
रिपोर्ट में लैंगिक समानता के क्षेत्र में धीमी रफ्तार वाली प्रगति देखी गई है और रिपोर्ट ध्यान दिलाती है कि लैंगिक समानता के क्षेत्र में जो प्रगति अभी तक हासिल की गई है वो व्यापक रूप में मौजूद असमानता, जलवायु संकट, संघर्षों और बहिष्करण वाली राजनीति के कारण पलटती नजर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र की महिला संस्था यूएन वुमेन की कार्यकारी निदेशक फुमजिली म्लाम्बो निंग्यूका का कहना है कि समानता का मतलब केवल ये नहीं है कि सत्ता से संबंधित केवल 1/4 सीटें महिलाओं के लिए छोड़ दी जाए, जबकि दुनिया भर में महिला प्रतिनिधित्व के मामले में ऐसी ही स्थिति है। बराबरी के लिए आधा हिस्सा होना जरूरी है और बराबरी से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए। उधर पीढ़ी समानता मुहिम के तहत बीजिंग घोषणा पत्र और कार्रवाई मंच के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यूनिसेफ, प्लान इंटरनेशनल और यूएन महिला संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि महिलाओं व लड़कियों के खिलाफ हिंसा अब भी आम बात है। उदाहरण स्वरूप वर्ष 2016 में मानव तस्करी के 70% पीड़ितों में महिलाएं व लड़कियाँ थीं, जिनमें अधिकतर यौन उत्पीड़न का शिकार हुई। 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग में औसतन हर 20 में से एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया। बाल विवाह और जननांग विकृति यानी खतना के कारण लाखों लड़कियों का जीवन तबाह हो रहा है। हर साल लगभग 1,20,00,000 लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है और 40,00,000 से ज्यादा लड़कियां जननांग विकृति का शिकार होने का जोखिम झेलती हैं। पोषण व स्वास्थ्य के मामलों में भी लड़कियों की स्थिति में गिरावट आई है। उधर इसी सप्ताह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि लैंगिक समानता में अंतर को दूर करने के क्षेत्र में पिछले दशकों में हुई प्रगति के बावजूद 90% पुरुष व महिलाएं ऐसे हैं जो महिलाओं के खिलाफ किसी न किसी तरह का पूर्वाग्रह रखते हैं।
और रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सिलसिले में हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने संयुक्त राष्ट्र महिला संस्था की भारत में उप प्रतिनिधि निष्ठा सत्यम से बात की और सबसे पहले जानना चाहा कि मौजूदा समय में महिलाएं किन चुनौतियों का सामना कर रही हैं।
महिलाओं की जो जंग है, जो मुद्दे उनकी जिंदगी में रेलेवेंट हैं, वो आमतौर पर वही हैं। कोई खास फर्क नहीं है कि हम एक बहुत डेवलप्ड कंट्री को उठाएं या डेवलपिंग कंट्री को उठाएं। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो वही मुद्दे हैं। इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, क्या वो उनको एक समान एक अपनी भागीदारी की हिस्सेदारी मिलती है या नहीं। घर को लेकर के जो वर्क, जो जिसको हम अनपेड केयर वर्क कहते हैं, वो एक ग्लोबल फिनोमिनन है जहाँ महिलाओं को बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ विच दे लीव आउट और दे लूज आउट ऑन सर्टन अपॉर्चुनिटीज। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, a life that is free from violence and also free from the fear of violence. तो मुझे लगता है घरेलू हिंसा ये चीजें हर जगह हैं, हर देश में हैं।
यंग वुमेन की कई कैंपेन्स हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल रही हैं, जैसे ही फॉर शी
जी।
ये साल खास तौर पर यूएन के लिए बहुत अहम है क्योंकि ये 75वां साल है
जी।
तो इस साल के लिए क्या कोई खास कैंपेन डिजाइन की गई है?
खास कैंपेन तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये साल हमारे लिए बहुत जरूरी है बिकॉज यूएन वुमेन इज ऑल्सो कम्प्लीटिंग अ डेकेड ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। दिस इज ऑल्सो 25 ईयर्स ऑफ बीजिंग। Member countries, including India, had articulated their commitments towards women's rights, and that's almost the first charter of women's rights anywhere in the world. So this is a historical moment where we have a convergence of anniversaries. Ab wo chahe UN ke 75 years ho, UN women ke 10 ho, SDG plus 5 ho, ya Beijing plus 25 ho. I think ek historical conjecture hai, ye jaanchne ka, ye parakhne ka, ki jo humne kaam kiya hai, हम किसको साथ ले चले, किसको पीछे छोड़ा है, इस चीज पे खास करके कि हमको अब सब सबको साथ लेके चलना चाहिए अपने मुद्दों पे। तो मैं कैंपेन तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक ग्लोबल बज है बीजिंग प्लस 25 का, और उसी के दौरान वी हैव अ न्यू प्लेटफॉर्म कॉल्ड जनरेशन इक्वालिटी फॉर 2025, जिसमें से हिंदुस्तान जैसे कई देश जो हैं वो लीडरशिप दिखाने का एक मौका है, एक जरिया है आर्टिकुलेट करने का कि हम एक मुद्दा उठाएं जो हमारे देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो, सबसे अर्जेंट हो, और उस पर हम एक कॉन्क्रीट रोड मैप 2025 तक का बनाएं कि ये गोल, वो एक मुद्दे पे, एक गोल पे हम 2025 तक क्या अचीव कर पाएंगे।
2030 के लिए आपका विजन क्या है?
इस एक कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक ये मेरा विजन नहीं, लेकिन शायद यूएन का विजन है। और यूएन, जब हम यूएन की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट 193 मेंबर स्टेट्स। 2030 तक हम एक इक्वल वर्ल्ड देखें। इक्वल क्या होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इक्वल यानी कि वही हिस्सेदारी मेरी हो, काम पे, घर पे, कम्युनिटी में, मार्केटप्लेस में, कि ये दुनिया किसी भी किस्म से, किसी भी तरीके से एक आदमी के लिए, एक औरत के लिए अलग ना हो। और हमें बहुत ज़रूरी है, मुझे यहाँ एम्फोसाइज करना, कि हम जेंडर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम आदमी औरत की बात नहीं कर रहे, जेंडर एक स्पेक्ट्रम है। तो दुनिया भर में हर किसी की एज अ सिटीजन इक्वल राइट्स हों, उसको एक्सरसाइज करने की इक्वल पॉसिबिलिटीज हो, किसी भी तरीके की अपनी राइट को एक्सरसाइज करने की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए।
विश्व भर में कोरोना वायरस यानी COVID-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों से दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। पिछले 24 घंटों में 47 देशों में COVID-19 के 2700 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है। अब तक इस वायरस के कुल संक्रमणों की संख्या 98,000 को पार कर गई है और 3300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसस ने सभी देशों से पुरजोर अपील कर कहा है कि वायरस पर काबू पाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। संक्रमण के मामलों को ढूंढना, परीक्षण करना, मरीजों को अलग करना और उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाना बेहद अहम है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस महामारी के फैलने की रफ्तार को धीमी करने से जिंदगियों को बचाया जा सकता है, और तैयारियों और रिसर्च के साथ साथ वैक्सीन व इलाज विकसित करने के लिए भी समय मिलेगा। COVID-19 के खतरे के मद्देनजर आने वाले दिनों में जरूरी दवाइयों की आपूर्ति और उपलब्धता का जोखिम भी है, क्योंकि दवाइयों में इस्तेमाल होने वाली कई अहम सामग्रियां चीन में तैयार होती हैं, जो इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जरूरी एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एचआईवी, टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयासों में जुटा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के भारत कार्यालय में नेशनल प्रोफेशनल ऑफिसर डॉक्टर पंकज भटनागर का कहना है कि लोगों को इस वायरस के संक्रमण से डरने की बजाय अलर्ट रहने और एहतियात बरतने की आवश्यकता है। नई दिल्ली में हमारी सहयोगी अंशु शर्मा के साथ बातचीत में डॉक्टर भटनागर ने रोजमर्रा के जीवन में COVID-19 से बचाव के उपायों के अलावा यूएन स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी।
हाँ, हमें अलर्ट रहना है क्योंकि भारत में जो स्थिति है उसके अंदर अभी हमारी कम्युनिटी के अंदर ट्रांसमिशन नहीं है। जो भी संक्रमण हुआ है, जो भी भारत के अंदर केस आए हैं, वो जो लोग ट्रैवल करके गए और अपने साथ इन्फेक्शन को घर कर लाए, और फिर वो इन्फेक्शन कुछ केसेस के अंदर, बहुत छोटा संख्या है, थोड़ा सा लोकल उनके जो आसपास में उनके फैमिली मेंबर्स हैं या जिनके साथ वो कांटेक्ट में रहे उनके अंदर फैल गया। तो कहने का मतलब ये है कि अभी स्थिति ऐसी है कि हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं।
तो ये बताइए कि WHO भारत में खासतौर पर सरकार के साथ मिलकर किस तरह के प्रयास में लगा हुआ है कि ये आगे ना फैले और इसकी रोकथाम की जा सके।
जो बीमारी की जानकारी है वो सबको अपने वेबसाइट और अपने जो विभिन्न इसके WHO के ऑफिसेस हैं उनके द्वारा ये जानकारी दी कि कैसे इस बीमारी का क्या लक्षण है, कैसे इसके लिए सारे देश और बाकी UN ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब मिलके इसकी सामना कर सकते हैं और इसको निपट सकते हैं। जहाँ पे उन्होंने सरकार ने WHO से मदद मांगी है कि आप हमारी आके मदद करिए, ये जो इतने सारे पैसेंजर्स जो आए हैं बाहर से उनको ट्रैक करें और उनको बताएं कि अगर उनको कोई भी सिम्टम्स होते हैं कोविड के तो वो जल्दी से जल्दी हेल्पलाइन पे फ़ोन करें या जो चिन्हित अस्पताल हैं उसमें जाके अपना जांच पड़ताल करवाएं।
ये जो COVID-19 का संक्रमण है ये अगर किसी को हो जाए तो इसको पहचाना कैसे जाए, इसके क्या लक्षण है और इससे किस तरह बचा जा सकता है?
जो COVID-19 है उसके लक्षण जैसे कोई आम बुखार खांसी उससे मिलते जुलते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस जो हम बोलते हैं उसके अंदर एक मुख्य लक्षण है बुखार, साथ में खांसी जैसे नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। कोविड के अंदर भी 80% केसेस ऐसे हैं जहां वो बड़े माइल्ड से सिम्टम्स हैं जिसमें ये बुखार खांसी ज़ुकाम नसला, कुछ केसेस में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको हम मतलब सांस फूलना, कमज़ोरी, कहीं कहीं सिर में दर्द और भी सिम्टम्स हैं। करीब करीब 20% लोग ऐसे हैं जिसके अंदर ये ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ जाते हैं और जब बीमारी के ज़्यादा प्रकोप ज़्यादा होता है तो उसके अंदर अगर किसी को ऐसा हो रहा हो तो उसे हेल्पलाइन पे फ़ोन करना चाहिए। इनमें से ज़्यादातर वो हैं जिनको बाकी हेल्थ कंडीशंस हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या कोई कैंसर का इलाज ले रहा है, कोई किडनी फेलियर है, इस तरह के लोग हैं जिनके अंदर ये डिज़ीज़ ज़्यादा सीवियर होती है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि ये डिज़ीज़ हो गई या ये बीमारी हो गई तो बचाव नहीं है। हमने ये देखा है कि इसके अंदर करीब करीब 2% मॉर्टेलिटी है, तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने अफगानिस्तान और उसकी सीमा के बाहर कथित युद्धापराधों और मानवता के विरुद्ध कथित अपराधों के मामलों की जांच के लिए अनुमति दे दी है। ICC के जजों ने इस तरह की जांच को वीटो करने वाले अपने एक पुराने फैसले को सर्वसहमति से पलटते हुए अफगान सुरक्षा बलों, तालिबान और अमरीकी सैन्यकर्मियों पर लगे कथित युद्धापराधों की जांच को शुरू करने के पक्ष में फैसला दिया है। पूरी जानकारी के साथ महबूब खान।
गुरुवार को नेदरलैंड्स के हेग शहर में स्थित ICC की ओर से जारी बयान के मुताबिक अपील चैम्बर ने पाया कि अभियोजक को जांच के लिए अधिकृत किया जाता है। ये कथित अपराध 1 मई 2003 से अफगानिस्तान के क्षेत्र में किए गए, साथ ही इनमें वो अन्य कथित अपराध भी शामिल हैं जिनका अफगानिस्तान में सशस्त्र संघर्ष से संबंध है और अफगानिस्तान में हालात से पर्याप्त ढंग से जुड़े हैं और जिन्हें अन्य सदस्य देशों के क्षेत्रों में अंजाम दिया गया। ICC द्वारा जांच की जिम्मेदारी मुख्य अभियोजक फतू बेंसूडा के पास होगी, जिन्होंने नवम्बर 2017 में पहली बार कोर्ट के प्री ट्रायल चैम्बर में अपील दायर की थी। उस समय उनके कार्यालय ने गंभीर अपराधों और अति गंभीर अपराधों के लिए जिम्मेदार नजर आने वाले दोषियों पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक कार्रवाई की अनुपस्थिति का हवाला दिया था। ICC अभियोजक फतू बेंसूडा का मुख्य कार्य तालिबान व हक्कानी नेटवर्क और अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों, नेशनल डायरेक्टरेट फॉर सिक्योरिटी और अफगान नेशनल पुलिस के सदस्यों द्वारा कथित युद्धापराधों व मानवता के विरुद्ध अपराधों की जाँच करना होगा। ICC अभियोजक अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्यकर्मियों और खुफिया एजेंसी CIA के सदस्यों द्वारा कथित युद्धापराधों की जांच करने के लिए भी तैयार हैं। ये कथित अपराध वर्ष 2003-04 की अवधि में अफगानिस्तान में गुप्त हिरासत केंद्रों में और ऐसे देशों में हुए जो रोम संविधि यानी रोम स्टैट्यूट पर मोहर लगाने वाले देशों में शामिल हैं। रोम संविधि पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति के बाद ही 1998 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC की स्थापना की गई थी।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय में प्रमुख और सहायक महासचिव सत्या त्रिपाठी ने वन्य जीवों व प्रकृति के संरक्षण को मानवता के अस्तित्व के लिए बेहद अहम करार दिया है। मंगलवार को विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर यूएन हिंदी न्यूज के प्रमुख महबूब खान के साथ इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि सस्टेनिंग ऑल लाइफ्स ऑन अर्थ यानी पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन को बनाए रखने की थीम का उद्देश्य क्या है।
इस थीम का मकसद यह है कि आप अगर जो वैज्ञानिक हमें कहते हैं पृथ्वी पर करीब 78 लाख स्पीसीज हैं, जिसमें से अभी हमारे व्यवहार के कारण और दुर्व्यवहार कहिए 10 लाख के करीब स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट होने के अवस्था में पहुंच गए हैं। तो जो इंसान सोचता है कि हमारे लिए सब कुछ बना है, इससे गलत सोच और कोई है नहीं। और उसी की वजह से अभी देखिए आप हम मधुमक्खी का सोचते हैं कि भाई ये हमारे लिए शहद बनाने के लिए बने हैं, बट जब वो मर जाती हैं, जब उनकी कॉलोनी कोलैप्स कर जाती है, तब हम उनको लाखों की तादाद में डब्बे में भर के ट्रक में लाद के फिर हजार हजार मील ले जाते हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके, उसके बगैर ना कोई फल बाजार में आएगा। तो ये जो समझ हमारे पास बहुत कम है, इसीलिए ये जो विश्व वन जीवन दिवस है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, महत्व इसका ये है कि इससे लोगों को याद दिलाते हैं कि पृथ्वी जो है सबके लिए बनी है, सिर्फ इंसान के लिए नहीं बना है, और हम सबके साथ मिल के रहें तो उससे बेहतर कुछ है नहीं।
तो उसी सिलसिले में यूएन की तरफ से इस साल बायोडायवर्सिटी सुपर ईयर भी मनाया जा रहा है जागरूकता बढ़ाने के सिलसिले में, तो आप और बताएं कि इसके तहत क्या खास गतिविधियां होती हैं।
अब इसको सुपर ईयर फॉर नेचर इसलिए कहते हैं क्योंकि दुनिया में सब कुछ है, पानी, हवा, समुंदर, पेड़ पौधे, इंसान, जितने प्राणी हैं, तो सबको मिला करके हम उसको प्रकृति कहते हैं। तो आप देखेंगे सारे धर्म में, आप किसी भी धर्म को उठा के देख लें, सब धर्म में प्रकृति सर्वोपरि है। तो अगर हम धर्म मानते हैं तो प्रकृति को सबसे पहले मानना चाहिए, अगर धर्म नहीं भी मानते हैं तब भी प्रकृति सबसे बेहतर है, बिकॉज वो विज्ञान हमें कहती है कि बिना प्रकृति का इंसान रह नहीं सकता। आप जंगल में चले जाएं तो जो जिनको आप आदिवासी कहते हैं या इंडिजिनस पीपल कहते हैं, तो उनका जो है प्रकृति की तरफ उनका जो रुख है वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ रहते हैं, तो हमें उनसे सीखना चाहिए, जिसको हम आधुनिकता कहते हैं, जिससे कि हम समझते हैं कि हमारे पास स्मार्टफोन है और उसमें ऐप हैं, तो ऐप को टैप किया तो आपकी ज़िंदगी बन गई, वो बहुत ही गलत सोच है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो न्यूयॉर्क में हम रहते हैं, तो यहाँ पे आप फ़ोन खोल के देखेंगे हज़ारों ऐसे ऐप हैं, आपने ऐप कर दिया तो गाड़ी पहुँच जाती है आपको लेने के लिए, फिर ऐप कर दिया तो कोई खाना पहुँचा जाता है, पर हम ये भूल जाते हैं कि खाना उगाता कौन है, वो किसान जो कि चार चार महीने किसी एक फसल उगाने के लिए कड़े धूप में मेहनत करता है तभी जाके कुछ उगता है। तो हम ये भूल जाते हैं, ये आधुनिकता के चक्कर में हम ये सोचते हैं कि ये जो मशीनें हमारे पास हैं इससे दुनिया चलती है, दुनिया इससे नहीं चलती है, कोई मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, भले वो इंसान हो या जीव जंतु हो, क्योंकि वो सब मिल करके मेहनत करते हैं तभी जा करके दुनिया जो है वो इसलिए है कि बहुत सारे में एलिमेंट्स हैं, तो सब जब मिलकर के हार्मनी में व्हेन एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर देन इट वर्क्स फॉर एवरीबॉडी, अदरवाइज इट वर्क्स फॉर नोबॉडी।
भारत में किस तरह से वाइल्ड लाइफ को सिक्योर करने के लिए या सहेजने के लिए प्रयास हो रहे हैं?
भारत में देखिए ये उन देशों में से है, बहुत कम देश ऐसे हैं पूरे विश्व में जिनमें एक प्रोफेशनल फॉरेस्ट सर्विस इंडिपेंडेंस के टाइम में बनाया गया, वन ऑफ द वेरी फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज तरीके से, जो अपने जंगलात हैं, जो अपने कंजर्वेशन जिसको कहते हैं, वो सबको देखने के लिए एक सर्विस बनाया गया। अब देखिए एक उदाहरण देना चाहूँगा, ये आंध्र प्रदेश में कहते हैं वो प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं, तो अभी आज के दिन में 7.5 लाख किसान अपनी कृषि पद्धति जो है बदल चुके हैं, वो कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करते हैं, और उनकी ईल्ड जो है कहीं 20% से लेकर के 200% तक बढ़ गई है। जब ये होता है तो आप देखेंगे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो 4 गुना 5 गुना बेहतर हो चुकी है।
संयुक्त राष्ट्र के 5वें महासचिव रहे हावियर पेरेज डी क्वेर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 2 बार महासचिव रहे पेरेज डी क्वेर को शांति वार्ता के रास्ते निकालने और कठिन दौर में विश्व संगठन का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है। पेरेज डी क्वेर ने 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक में भी शिरकत की थी। उनके जीवन, कार्यकाल और उपलब्धियों के बारे में ज्यादा जानकारी हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।